ओम शांति। कल रात हमने जो प्यारे अव्यक्त बाप दादाजी की मुरली को सुना, यह मुरली चली थी 5 फरवरी 2009 को। 5 फरवरी 2009 की मुरली रिपीट हुई है, लेकिन किसी को भी ये लगा कि ये मुरली हमने पहले सुनी थी और हूबहू इसके सभी जो भी बाबा ने शिक्षाएं दी किसी को याद थी या न्यू लग रहा था। जो समझते हैं कि ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये शिक्षाएं इतनी गहरी हम पहली बार सुन रहे हैं, ये नहीं लग रहा था कोई याद किया हो, कोई रिपीट हुई है बात, और जितनी धारणाएं इसमें बताई गई वो हम अब से करेंगे या 2009 से हमने कर ली हैं, तो क्या ख्याल है आपका? कहते हैं कि शास्त्र जो हैं द्वापर में लिखे गए और हमने ये शास्त्र जन्म जन्म पढ़े हैं, इस जन्म में भी पढ़े हैं, आज सुने हैं और पिछले जन्मों में भी, तो वही का वही शास्त्र जितनी बार रिपीट होता है। और बाबा की मुरली तो एक ही बार ही रिपीट हो रही है, तो आप सबने इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि वर्तमान समय हम सबको फरिश्ता बनना है और तभी हम देवता बन सकते हैं, उसी के बारे में ये मुरली थी। इसको अब हम मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये सभी भाई बहन जो बैठे हैं, आप सब गुजरात के हैं या गुजरात के अलावा भी कोई हैं? जो गुजरात वाले हैं जरा हाथ उठाइए। वाह, ये तो पूरा ही गुजरात है। तो गुजरात वालों की विशेषताएं जो बाबा ने भी अपनी मुरलियों में कई बार कही हैं और हर एक के अनुभव के भी हैं, वो विशेषताएं हम आपको सुना रहे हैं। आप सुनते जाना और हर विशेषता पर, अपनी विशेषता पर आपको क्या करना होगा, ताली बजानी होगी। ठीक है, पहले तो पहले ही बजा दो आप। हाँ। देखिए, ये विशेषताएं सिर्फ गुजरात की हैं। बाबा भी जब मुरली चलाते हैं तो जो जोन आता है उसकी जो विशेष विशेष बातें होती हैं वो बताते हैं। तो आप गुजरात के किसी भी घर में चले जाएं तो आपको झूला मिलेगा, मिलेगा झूला। और सारे इंडिया में कोई कोई शौक से झूला लगा लेता होगा, लेकिन गुजरात में झूला जरूर होता है। तो ये है विशेषता, क्योंकि झूले का अर्थ क्या है? अभी इतनी ताली बजाओ पूरे झूले की। झूले का अर्थ क्या है? कि कोई खुशी वाला ही झूला झूल सकता है ना, और उसमें बैठ करके परिवार के लोग झूला झूलते हैं, अर्थात झूलते तो हैं, जो झूले लाल है उसको याद करते हैं। अभी तो भक्ति हो गई, लेकिन परमात्मा की गोद में बैठकर जो झूला हम झूल रहे हैं संगम पर, उसका यादगार, जैसे गंगा ज्ञान गंगाओं का यादगार है, तो झूला बाबा की गोद में झूलने का यादगार है, तो केवल और केवल गुजरात में ही पाया जाता है। इसलिए ताली बजा दो। आगे चलो, हम सारे भारत में घूमते हैं लेकिन केवल गुजरात के किसी घर में जाएंगे तो जूता को बाहर उतारा जाएगा, और जूता को बाहर उतार के आप घर में नंगे पांव घूमेंगे, बाद में देखेंगे आपके पांव फिर भी साफ हैं। अर्थात कि इतना साफ घर को रखा जाता है तो कोई व्यक्ति नंगे पांव भी घूमता है। तो सफाई कहा जाता है स्वच्छता। बाबा ने कल भी कहा था, अंदर की स्वच्छता बाहर की स्वच्छता को रिप्रेजेंट करती है। अंग्रेजी भाषा में कहते हैं क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो ये भी खूबी हमने गुजरात में देखी है, इसके लिए भी आपको ताली बजानी पड़ेगी। और आगे चलो तो जो गरबा डांस होता है, गरबा नृत्य, वो भी गुजरात का ही प्रसिद्ध है। और थोड़ा रुक जाओ, जब मैं पूरा उसकी परिभाषा कर लूं फिर बजाना। अब गरबा नृत्य जो है ये किस चीज की यादगार है, आप देखेंगे जब शुरू करते हैं गरबा नृत्य तो शरीर का, आयु का, किसी चीज का ख्याल नहीं रहता, अशरीरी हो जाते हैं। चाहे कोई बूढ़ा भी होगा चाहे कोई मोटा भी होगा, लेकिन गरबा नृत्य में इतनी खुशी से यानी अशरीरी बन जाते हैं। तो इसलिए ये भी गुजरात की खास विशेषता है। अभी नहीं, थोड़ा रुको। गरबा नृत्य और भी बहुत बातों को बताता है। वो ये है कि रास मिलाना, यानी आप देखते हैं कि नृत्य में क्या होता है, ये एक दूसरे की जैसे कर रहा है बाकी सब करते हैं। तो रास मिलाना अर्थात राशि मिलाना, अर्थात संस्कारों को मिलाना। तो उसका यादगार रास मिलाने के रूप में बताया जाता है, और फिर सर्कल के रूप में। तो ये सर्कल किस चीज की निशानी है, आपको पता है कि सबसे बड़ी जो रास गिनी जाती है श्रेष्ठ, वो पूर्णमासी के दिन गिनी जाती है। और उसकी भावार्थ क्या है कि जैसे रात को दिन कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा की रोशनी होती है, और फिर जगे हुए दीपक बाकी सब अंधकार में हैं, और ये चैतन्य आत्माएं रास कर रही हैं। और सर्कल जो है सृष्टि चक्र को रिप्रेजेंट करता है, कि माया बाहर चक्र का संगठन है, उसके अंदर तो माया आ ही नहीं सकती। तो सृष्टि चक्र के रूप में यानी हम रास करते हुए अपना सारा सुदर्शन चक्र घुमाते हैं, चक्कर घुमाते रहते हैं घुमाते रहते हैं, तो हाथ में हाथ भी पकड़ते हैं, ताकि किले की निशानी है। तो कितनी शानदार ये जो गरबा रास है, और इसमें जो राशि मिलाना है संस्कार मिलाने का प्रतीक है, ये यहाँ का ही प्रसिद्ध है। इसलिए आप जोरदार ताली बजाओ। वैसे तो बहुत सी छोटी बड़ी बातें हैं, पर हमने मुरली मंथन भी करना है, इसलिए यही पूरा करते हैं। तो आपकी जो तीन विशेषताएं हैं, झूला, सफाई और रास, ये तीनों विशेषताएं बहुत ही विशेष हैं। और इसीलिए बाबा कहता है कि मैंने मधुबन जो है बिल्कुल गुजरात के साथ ही बनाया है, जैसे कि मधुबन में ही है। मेरी माताजी मथुरा में रहती थी, वहाँ सेंटर था, हम देखते थे गुजराती ही बहुत ज्यादा उसमें आते थे, जो कृष्ण के भगत होते हैं ना वहाँ बहुत आते थे। तो कृष्ण को आपको पता है कि आकर्षण करने वाला और फर्स्ट विश्व महाराज कुमार है, तो जरूर ऐसा लगता है कि विश्व महाराज कुमार जो है गुजरात, उस वक्त तो सारा वर्ल्ड एक हो जाता है, वहीं उसने जन्म लिया होगा शायद। नहीं, अब तो हम उसको गुजरात कहते हैं लेकिन सारा भारत हो जाता है। कुछ भी है, मतलब बहुत शानदार आप लोगों का भाग्य है जो आपने गुजरात में जन्म लिया। अब हम सुनते हैं बाबा की वाणी। मुरली का शीर्षक है सेवा करते डबल लाइफ स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, शरीरी बनने का अभ्यास करो। ये दो बातें हैं, एक तो फरिश्तेपन का अवस्था में रहो लौकिक में अलौकिक में रहते हुए, और अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अब आप देखिए फरिश्ता, फरिश्ता जो होता है कहाँ रहता है? फरिश्ता रहता है सूक्ष्म लोक में, और सूक्ष्म लोक में क्या हो सकता और क्या नहीं हो सकता। बाबा कहा करते थे, जब बाबा साकार में थे तो जो भी आत्माएं उनको मिलने आती थीं, तो बाबा कहते थे कभी तो गवर्नमेंट के लोग मिलने आ जाते थे तो बाबा को मजबूरी से उनको मिलना पड़ता था, और कभी विकारी लोग भी आ जाते थे, यानी वो समझते थे कि हमारे विकार छुपे हुए हैं, और आकर के बाबा से टोली भी लेते थे। तो कई माताएं बाकी पहनने की कोशिश करती थी। उस वक्त बाबा कहते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब बाबा को कोई छू भी नहीं सकेगा, और कोई भिखारी या कोई सरकारी या कोई भी व्यक्ति बाबा के समीप नहीं आएगा। तो हम सोचते थे कैसे, वो कैसा दिन होगा, उस वक्त तो पता नहीं था ना बाबा व्यक्त होगा। हम सोचते थे शायद मना किया जाएगा कि कोई भी भिखारी ना बाबा को पास आए, भिखारी तो छुप के आते हैं। अब हमने देखा कि बाबा फरिश्ता बन गए। अफरिश्ता बनने से कोई भी इस संसार का साकार लोक का कोई भी व्यक्ति बाबा से मिल नहीं सकता। हम भी साकार शरीरधारी हैं, लेकिन अगर हमको बाबा से मिलना हो तो हम अव्यक्त में मिल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि वो फरिश्ता वाली बात सेट हो गई। दूसरी बात क्या है, अव्यक्त लोक में क्या कोई को ब्लड प्रेशर होता फरिश्तों को? अव्यक्त लोक में किसी को डायबिटीज, हार्ट अटैक, इस तरह की बीमारी, नींद ना आना होता है? होता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सब प्रकार की चीजों से मुक्त, अव्यक्त लोक में ईर्ष्या भी नहीं होती, द्वेष भी नहीं होता, देहंकार भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, यहां तक कि वहां रात दिन भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं अगर हम इस लोक में रहकर अव्यक्त लोक के वासी बने तो क्या होगा कि आपको देखा भान, देखा अभिमान, देखे रोग, देखी जितने भी चीजें हैं उससे आप बच सकते हैं। अब बाबा कहते हैं कि फिर आप जो हम लाइट स्वरूप हैं, असल में तो अंदर आत्मा हम लाइट स्वरूप हैं, और सूक्ष्म शरीर में भी हम लाइट स्वरूप हैं, तो लाइट स्वरूप बनने से और उसके में चलने से धीरे धीरे दुनिया वालों को जब आप देखेंगे उनको लाइट का साक्षात्कार होगा, दिखेगा। अब बाबा ने कहा हुआ है कि अंत समय आपको लोग लूटने आएंगे, आपको बुरी दृष्टि से देखने आएंगे, लेकिन आप उनको दिखेंगे ही नहीं, उनको लाइट लाइट दिखेगी, आप गायब हो जाएंगे। तो कितने फायदे हैं। और अब तो हमारी वो 2009 से भी लेकर अब तो 18 हो गया, 19 होने वाला है, अब तो हमको उस स्थिति को धारण करना ही चाहिए। तो इसलिए आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के तीन रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी तीन रूप देख रहे हैं। तो बाबा ने सहज करने के लिए कहा तीन रूप देख रहे हैं। वास्तव में तो हमारे ज्ञान के अंदर कई स्टेजेस आती हैं। बाबा कहते पहले आप कलयुगी दुनिया में कलयुगी संस्कार वाले दुख देने वाले कांटा थे, कांटा से फिर ज्ञान में आए तो कली बन गए, फिर ज्ञान की प्रकाष्ठा आई तो फूल बन गए। और फूल भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है कमल पुष्प, एक होता है गुलाब का पुष्प, और एक होता है सूर्यमुखी का फूल। तो तीनों का ज्ञान से कनेक्शन है। फिर बाबा कहते हैं फूल से आप फल बन गए, हर फल के पहले उसका फूल निकलता है, फल के बाद आप बीज बन गए। तो ये हमारी स्टेजेस हैं। इसी प्रकार से हम कहें कि हम पहले मायावी थे, तो मायावी से हम आके ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से हम सीधा देवता नहीं बन सकते, ब्राह्मण से हम फरिश्ता बनते हैं, फरिश्ता से हम फिर आत्मा बनते हैं, थोड़ी देर के लिए परमधाम में जाते हैं, तब जाके देवता बनते हैं। तो कई स्टेजेस हैं। लेकिन वर्तमान समय बाबा कहते हैं बहुत सारी यात्रा तो आपने कर ली, अब जो यात्रा है वो ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। बाबा परमधाम इसलिए नहीं कहते कि परमधाम में देवता कहलाने वाली आत्मा बहुत थोड़ा रहती है, क्योंकि जिसको सुख मिल रहा हो, जो स्वर्ग में जा रहा हो, वो शांति धाम में क्यों रहेगा। अब बाबा कहते हैं आपका पार्ट भी ऑलराउंडर है, इसलिए जाते ही हाथ लगा के जाना तो पड़ता है, लेकिन आप गो सुन कम सुन करके आ जाते हो। तो तीन स्टेजेस हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस संगम युग का लक्ष्य भी है और लक्षण भी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, मानव से देवता बनना, नर से श्री नारायण बनना, नारी से श्री लक्ष्मी बनना। ऐसा नहीं है कि नारी नारायण नहीं बन सकती और नर लक्ष्मी नहीं बन सकता, पर कहने में आता। तो पहला स्वरूप है ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता और तीसरा देवता, ये तो हमें पक्का है। ब्राह्मण तो हम हैं ही, फरिश्ता हमको बनना है सूक्ष्म, फिर वहां से जाके देवता। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्षण, क्या लक्ष्य सामने रखना है। तो बाबा कहते पहले लक्ष्य रखोगे तो लक्षण आएंगे, जैसा लक्ष्य होगा वैसे लक्षण आप ही आ जाते हैं। आप देखिए जब बाबा हमको एक्सरसाइज करवाते हैं कि मन को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज करो, तो हम जिस लोक में जाते हैं वैसा ही स्वरूप आप सब आपका बन जाता है। लौकिक में भी कहते हैं जैसा देश वैसा वेश, आप ही हो जाता है। अब आप सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो आपको अपना आकारी रूप ही दिखाई देगा, आप परम धाम में जाएंगे तो आप आत्मा स्वरूप में दिखेंगे, आप देवताओं की दुनिया जाएंगे तो आपको भी अपना देव स्वरूप दिखेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तो जैसा लक्ष्य रखते हैं वैसे लक्षण आ जाते हैं। अगर बाबा कहे कि सारे सृष्टि चक्कर के आदि मध्य अंत का चक्कर लगाओ, तो कहे द्वापर में जाओ, तो द्वापर में आपको क्या दिखेगा? भक्ति हो रही होगी, पूजा हो रही होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्वरूप ऐसा ही बन जाएगा। दुनिया के अंदर भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी खुशी के मौके पे जाते हैं तो आप अच्छे वस्त्र पहन के जाते हैं। जब आप किसी अफसोस की जगह जाते हैं, कहीं शोक हो रहा हो, तो वहां आप तड़क भड़क वाले वस्त्र नहीं पहनते हैं, जेवर नहीं पहनते हैं, लिपस्टिक नहीं लगाते हैं, रंगदार वस्त्र, कि भाई शोक सभा है तो या तो सफेद वस्त्र पहन के जाएंगे। कई धर्मों में तो काले भी पहन के जाते हैं। तो कहने का भाव क्या है कि जैसा देश वैसा देश प्रसिद्ध है, और जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण भी प्रसिद्ध है। और इंग्लिश भाषा में कहते हैं डू इन रोम एज रोमन्स डू, कि जिस जगह आप जाओगे उसी प्रकार का करोगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि वर्तमान समय क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता बन नहीं सकते। तो फर्स्ट लक्ष्य क्या हुआ? जैसे बस स्टॉप होता है, मान लो किसी के वाया जाना पड़ता है, जैसे बाबा कहता था कि ब्रह्मा, किसी शिव बाबा को लेटर लिखना हो तो वाया ब्रह्मा बाबा लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार से कई जगह आपको, मान लो लंदन जाना है तो वाया अहमदाबाद एयरपोर्ट के जाना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से बाबा कहते हैं कि फरिश्ता बने बगैर देवता नहीं बन सकते। तो पहला बस स्टॉप क्या हुआ हमारा? फरिश्ता, ठीक है ना। इसलिए बाबा कहते हैं ब्राह्मण से फरिश्ता हमारा लक्ष्य है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण, एक तो समय के प्रमाण और एक पुरुषार्थ के प्रमाण, सभी का लक्ष्य यही है फरिश्ता। क्योंकि समय भी व्यक्ति को बताता है कौन सा युग है, मुझे कौन सा कर्म करना है। तो समय भी फरिश्ता बनने का है, कुछ समय के बाद तो फरिश्ता ही बनना होगा। और लक्ष्य भी हमारा यही है, पुरुषार्थ भी यही है। तो संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फाइनल स्टेज क्या है? संगम युग पर ही हमें फरिश्ता बन के देवताओं के गुण भी धारण करके जाना है ना। इसलिए संगम युग का एक तो वर्तमान स्वरूप है और एक संपन्न स्वरूप है, वो है फरिश्ता सो देवता बनना। अब बाबा कहते हैं फरिश्ते की परिभाषा भी जानते हो, हर एक को ज्ञान है, क्योंकि जिस कोर्स को कोई उठाता है उस कोर्स की नॉलेज तो होती है ना। किसी को डॉक्टर बनना है, अभी बना नहीं, पर ये तो पता है कि डॉक्टरी का कोर्स कर रहा हूं। इसलिए बाबा कहते हैं फरिश्ते स्वरूप की परिभाषा को भी जानते हो। अब सुनिए, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के, क्योंकि फरिश्ता इस दुनिया में नहीं होता, पुरानी दुनिया में तो होता ही नहीं, कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं होता, और संगम पर होता है लक्ष्य, लेकिन संगम पर मिक्स संस्कार होते हैं। भले बाबा ने हमें कलयुग से अलग करके संगम युग में ले आए हैं, लेकिन संगम युग में मिक्स संस्कार होते हैं। हम पुरानी दुनिया को छोड़ रहे हैं और नई दुनिया की तरफ जा रहे हैं, इस पार से उस पार जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प, यानी पुरानी दुनिया में हम है तो सही ना, तोड़ निभाना है। इसलिए बाबा कह रहे हैं पुरानी दुनिया के संबंध दूसरों के साथ, संस्कार अपने और संकल्प जो संस्कार के आधार पर उठते हैं, इनसे हल्का हो। तो बाबा ने फरिश्ता की डेफिनेशन क्या बताई, हल्का, कि इन सब चीजों में भारी ना हो, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही होता है बोझ नहीं होता जिसके ऊपर, शरीर का भी बोझ नहीं होता, तो हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों, यानी पुराने संस्कार के अनुसार हम ये नहीं कहें कि भाई इससे तो मैं बात नहीं कर सकता, आप ही इसको कह दो, तो भारी संस्कार है ना, कि मैं किसी से बात करना चाहता हूं, कोई ऐसे संस्कार वाला आ जाए, इसका तो भाई मैं सामना नहीं कर सकता, पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए क्रोध हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो बाबा कहते हैं भारी संस्कार है। अब बाबा ने ये तो कह दिया कि संबंध संस्कार और संकल्प में हल्का हो। अब आगे बाबा क्या कह रहे हैं कि सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में भी हल्कापन हो। कि मैं अपने स्थिति में हल्का हूं वो बात नहीं है, अन्य के साथ भी जब आप आते हैं संबंध संपर्क में तो आपके संस्कारों में हल्कापन हो। इस हल्केपन की निशानी क्या है? अब बाबा कहते हैं कि मैंने बता दिया डेफिनेशन, अब निशानी क्या है कि आप हल्के हैं? तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल है ये, वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, ये निशानी है। अर्थात सबके साथ सबका उनसे प्यार होगा, ये नहीं कि हम सबके प्यारे होंगे, सब का उनसे प्यार होगा। नेचुरली सबका उनसे होगा तो हम भी उनसे उनके प्यारे होंगे। अब बाबा आगे बता रहे हैं धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप फरिश्ता की डेफिनेशन बता रहे हैं। पहले कहा हल्का, फिर बाबा ने कहा वो भी हल्के और आप भी हल्के। अब थर्ड बात बाबा कह रहे हैं कि वो सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे होंगे, ये निशानी है। अब हम कहां तक फरिश्ता बने हैं तो हमने देखना है, हम सर्व के प्यारे हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता था कि मेरा है, अर्थात मेरापन हर एक को फील हो आपके अंदर, उनको आपके पास आने में, आपसे मिलने में, आपसे बात करने में कोई झिझक ना हो, किसी बात को छुपाने की इच्छा ना हो, तो डर ना लगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं बिल्कुल अपना समझ के, तो इसको हम कहेंगे अपनापन, कि ब्रह्मा बाबा को जैसे हर एक समझता है मेरा है। हमने देखा है जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे तो एक बार ब्रह्मा बाबा को बंबई जाना पड़ गया, बॉम्बे में अपनी बॉडी को चेक कराने के लिए पहली बार। तो उस समय एक ही टैक्सी होती थी आबू में, एक ही कार वो बुलाई गई, यज्ञ में तो था ही नहीं कोई साधन, तो बाबा को अब माउंट आबू से आबू रोड जाना था। सबको बाबा विदाई दे रहे थे और सबसे विदाई ले रहे थे, तो हमने देखा कि घर में जो यज्ञ में साफ करने वाली माताएं आती हैं, वो उनके बाल बच्चे सब रो रहे थे। बीके लोगों में तो आंसू थे ही, क्योंकि पहली बार बाबा माउंट आबू छोड़ के जा रहे थे, लेकिन वो सारे के सारे बाबा बाबा कह के, जैसे उनके दिल भरे हुए थे बाबा जा रहा है, जैसे उनके कोई प्राण जा रहे हो। तो बाबा कहते कि ये कहां से आया, बाबा के प्यार से आया। भले वो सेवादारी थे पर बाबा उनको भी बच्चे ही बच्चे कह के पुकारता था। बाबा के लिए तो सारी दुनिया ही बच्चा थी। एक बार वहां पर सांप निकलते थे ना, तो हमारे भाई सांप को लेकर बोतल में डाल देते थे। अच्छा, तो एक सांप को बोतल में डाल दिया गया तो एक आध दिन के बाद वो जैसे मरा हुआ सा होता ना, अधमरा बोतल के अंदर दिख रहा था। तो बाबा ने कहा बच्चा उदास हो गया, इसको जंगल में छोड़ो। सांप को भी बाबा बच्चा कहता था। अब आप सोच सकते हैं कितना बाबा स्नेही था। और आप जानते हैं कि जब ब्रिज कोठी ली गई थी माउंट आबू के शुरू में, तो उसके पीछे कब्रिस्तान था, तो वहां सांप तो बहुत ही निकलते थे। तो बड़ी दीदी को भेजा गया था, मनमोहनी दीदी को, कि जाओ माउंट आबू में जगह देख के आओ। तो मनमोहनी दीदी ने वो बिल्डिंग सिलेक्ट की थी। तो जब आए बिल्डिंग में तो देखा बहुत सांप है। तो दीदी ने कहा बाबा को, बाबा शायद मेरी जजमेंट में गलती हो गई है जो मैंने ये जगह सिलेक्ट कर ली, देखो बाबा कितने सांप हैं। तो बाबा ने कहा ये क्या सांप है, इससे ये तो सांप हैं लेकिन इससे जहरीले तो मनुष्य जहर वाले हैं दुनिया के अंदर, ये बाबा ने कहा। और दूसरी बात क्या है, इतने सांप होते हुए भी बाबा ने बच्चों को निर्भय बनाया और एक भी बच्चे को कभी भी किसी सांप ने नहीं काटा। ताली बजाओ, देखो कितनी बाबा की शक्ति है। अर्थात तो बाबा कहते हैं कि अपनापन करने से, वैसे दुनिया में भी आप देखो, आप ऐसे चुटकी बजाओगे तो जानवर आपके पास प्यार से बैठ जाएगा। मूल्यों में बाबा ये भी कहता है कि किसी को ऐसा भी स्नेह ना दो जो आपके पास ही बैठ जाए। लेकिन स्नेह बड़ी चीज है और दिल का स्नेह के ये तो रचना है, ये तो सारे सतयुग में तो कोई ऐसा जानवर दुख देने वाला होता ही नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरापन, यानी रचेता के तौर पे या परम पिता के तौर पे कि मेरी संतान है, ये भावना। तो बाबा कहते हैं मेरा बाबा कहते थे ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व का प्रिय, क्योंकि फरिश्ते को से किसी को शत्रुता या दुश्मनी बैर तो हो ही नहीं सकता। फरिश्ते को क्या दिखाते हैं, फरिश्तों को हमेशा दिखाएंगे ब्लेसिंग देने वाला। फरिश्ता जाएगा और कुछ ना कुछ दूसरे को शांति संतोष दे के आएगा। जितनी कहानियां हैं उसमें फरिश्ते को ब्लेसिंग देने वाला और भूत को दुख देने वाला दिखाते हैं। दोनों ही शरीरधारी नहीं होते, लेकिन फरिश्ता एक तो सदा ब्लेसिंग देगा, दूसरे ज्यादा देर टिकता नहीं है। वो फरिश्ता ने अपना काम किया आगे, किसी फरिश्ता किसी जगह पर ठहरता नहीं है। जबकि भूत जो होता है, भूत जब आ जाता पूछ के नहीं आता वो कि मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ जाऊं आपके, नहीं। लेकिन भूत तो निकलता नहीं है, वो वहीं बैठ जाता है और पोजेस करके बैठ जाता है। आपको पता है भूत को निकालने के लिए कि मारा जाता है, पीटा जाता है, मिर्चें सुगाई जाती हैं, तो ये फर्क होता है। तो कई लोग ये भी समझते हम तो अव्यक्त हो गए, लेकिन किस रूप में हुए। तो भूत उस लोक में नहीं जा सकते, फरिश्तों के लोक में भूत नहीं जा सकते, ये भूत यहां भूत हो सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि सर्व का प्रिय है। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने, यानी ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा आते थे, उनके पास तो स्पेशल शक्ति थी। बहुत सारों को ये नहीं पता है कि ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा आते थे। इसका ये अर्थ नहीं है कि ब्रह्मा बाबा को विशेष पावर्स थी। बाबा कहते थे मैं लैंड लॉर्ड हूं, अर्थात मैंने अपना रथ परमात्मा को दिया हुआ है, اس کا کچھ نہ کچھ مجھے اچھا کرایا تو ملے گا. لیکن یہ نہیں ہے کہ برہما بابا کے وکرم اس کارن سے وناش ہو جائیں, برہما بابا کو یاد نہ کرنا پڑے. آپ نے کئی مرلیاں سنی ہوں گی کہ بابا کہتے ہیں کہ میں یاد کرتے کرتے بھول جاتا ہوں, اتنا دھیان رکھتے تھے, رات کو یاد کرتا ہوں, نندرا جیت کو. تو پرشادت تو برہما بابا کو بھی کرنا پڑا, پھر بھی کہنے میں آ جاتا ہے کہ برہما بابا تو برہما ہی تھے نا. تو بابا کہتے ہیں اچھا اس کا ایگزامپل نہیں لو. آتماؤں میں دیکھا آپ نے کہ آپ کی سب کی پیاری دادی جن کے فوٹو لگے ہوئے ہیں نا پیچھے, دادی جی کے دو فوٹو بہت اچھے لگے ہوئے ہیں یہاں, کیسے ہم سب کو ان کی نظر میں آج بھی آپ دیکھیں گے کتنا پیار ہے, اور ان کی آنکھیں اتنی وائٹ ہیں, اتنی سندر ہیں کہ جو بھی آتما پیور ہوتی جاتی ہے اس کی آنکھیں سفید ہوتی جاتی ہیں, اور جو وکاری بنتی جاتی ہے اس کی آنکھوں وائٹنیس اس کی گھٹتی جاتی ہے. تو بابا کہتے ہیں آپ کی پیاری دادی جس کو سبھی پیار سے انبھو کرتے رہے کہ یہ میری دادی ہے. ہماری دادی میں بہت خوبیاں, گپت خوبیاں تھیں, میری دادی ہے. دادی سے کسی کو بھی ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی تھی کہ دادی جی سے میں ٹائم لوں پھر جاؤں, نہیں, کھلی چھٹی ہے. دادی نہانے جا رہی ہے تب بھی کوئی آ جائے گا ملنے, ہاں. ایسی دادی سرو طرف سوبھاؤ سنسکار, اور اس پرانے سنسار میں رہتے ہوئے آپ سوچو دادی اسی دنیا میں رہتی تھی, اور یگیہ کے اندر بھی بھانت بھانت کے کاٹھی کٹھی کی ہوئی تھی, اور دادی نے یگیہ کو کتنا ورشوں تک چلایا. برہما بابا تو 1969 میں ویکت ہو گئے, اس کے بعد دادی نے کتنا چلایا. اور دادی میرے خیال میں دنیا میں جتنے وی آئی پی ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر کوئی ملا ہو تو دادی ملی ہے. آج تک کوئی ایسا ویکتی نہیں ہوا, چاہے امریکہ کا راشٹرپتی ہو یا بھارت کا کوئی ہو, جو اتنے لوگوں سے ملا ہو, اور نہ صرف راج نیتاؤں سے بلکہ دھرم نیتاؤں سے, ہر پرکار کے لوگوں سے, چھوٹے بڑے سے. تو اتنے ویوہار کرتے ہوئے بھی نیاری اور پیاری رہی. تو سب حق سے کہتے تھے ہماری دادی. تو کارن کیا, اب بابا بتائے, بابا اگزامپل کیوں دے رہا ہے کہ بابا کہتے ہیں کارن یہ تھا, یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ سوئم سوبھاؤ اور سنسکار میں ہلکے تھے. اپنا ہلکا پن, اپنا فرشتہ پن کی دادی کو سب کا پیارا بناتا تھا. نیاری ہے لیکن پیاری ہے. اچھا تو ایگزامپل رہا نا, جگت امبا کا بھی دیکھا. جگت امبا بھی اسی طرح سے تھی, لیکن کئی سوچتے ہیں وہ تو جگت امبا تھی نا, حالانکہ جگت امبا بھی اپنی محنت سے. جگت امبا کو برہما بابا میں تو چلو شیو بابا آتے تھے, لیکن جگت امبا تو پھر بھی اپنے بل بوتے پر جگت امبا سرسوتی شری لکشمی بن گئی. سرسوتی بنی پہلے تو سادھارن کماری تھی. اور ہم نے دیکھا کہ مما کے جب بابا نے مما کو مما کا وردان دیا بننے کا, تو مما کی باڈی بھی چینج ہو گئی. اب آپ مما کا فوٹو دیکھیں گے تو ماتا روپ کا ہے. اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ مما کو مما کی ماتا لوکک وہ بھی مما کہتی تھی. وہ سندیشی ہوتی تھی اس سمے یگیہ کی, اس کا نام تھا روچا ماتا. اور بابا بھی مما کو مما ہی کہہ کے بلاتے تھے. بابا نے کبھی بھی مما کو اور مما, تو مما مما سب کی بن گئی, تو اس کا شاریرک آکرتی بھی بدل گئی. اور کبھی آپ مما کے فوٹو کو غور سے دیکھو گے تو مما کی آنکھیں تھوڑی سی اوپر کو ہوتی ہیں, ارتھات وہ ہر وقت شیو بابا کو یاد کرتی رہتی ہے. تو بابا کہتے پھر بھی کئی کہہ دیتے ہیں وہ تو جگدمبا تھی. लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी, दादी सबके साथी थी ना, दादी ने कभी नहीं कहा ये उसको विशेष पावर थी, अपने हल्केपन से और स्वभाव से बनी, नम्रता का स्वभाव, हर बात में हल्का। उस हमने देखा दादी से कोई भी कोई बात कर दे, दादी उसको ऐसे पानी में जैसे लकीर होती है ऐसा होता था। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि हम लोग इंद्रप्रस्थ है ऊपर, आपने देखा होगा इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग में एक कमरे में हम दो भाई रह रहे थे, तो कुछ संख्या बढ़ी तो मुझे किसी ने आके कह दिया कि दादी जी आपके कमरे में एक और भाई डाल रही है। कह दिया अच्छा, अब उसमें तीन कमरे तीन बेड पड़ जाए तो आपको उठने का भी जगह नहीं मिलेगी बाथरूम में जाने की भी। तो मैंने सोचा तीन भाई डाल दिए हैं, तीन भाई कैसे आएंगे। किसी ने कह दिया, मैंने सुन लिया, जैसे कहते ना दूसरे की बात सुनना। शाम को रात को दादी जी हमारे कमरे में आई। दादी जी वैसे भी चक्कर लगाती थी क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया था कि दादी जी आपके कमरे में तीसरा डालने वाली हैं, तो मैंने दादी जी तो वैसे ही आई, तो मैंने कहा दादी जी आप देखो ना इसमें जगह कहाँ है, इसमें तो एक बेड और डल जाएगा तो उठ भी नहीं सकेंगे। तो दादी जी मुस्करा के चली गई ना, उन्होंने मुझे कहा किसी को डालना है, वो इस काम के लिए आई भी नहीं थी, वैसे ही आई थी, पर क्योंकि मेरे मन में किसी ने डाल दिया था मैंने बोल दिया। अब क्या हुआ, रात को उन दिनों में शीशे के थर्मास होते थे जिसमें शीशा होता था टूटने वाला, तो मेरे साइड में मेरा थर्मास रहता था और मैं यज्ञ में 15-15 दिन रहता था। रात को 1 बजे के करीब धाम से आवाज आई और मैंने देखा मेरा थर्मास टूट गया है। अब मैंने सोचा कि ये थर्मास तो रोज यहाँ रहता है, मेरे को अभ्यास है, लेकिन उस दिन मेरे मन में डिस्टरबेंस आ गई ना, तो कहीं कोनी वोनी लग गई, क्योंकि एक शुद्ध आत्मा दादी जैसी के लिए मैंने ऐसा बोल दिया जबकि दादी ने मुझे ना रखना था, तीसरा ना रखा, कई सुनी के ऊपर। तब मैंने नोट किया कि अपने मन को मैंने डिस्टर्ब कर लिया। ऐसी जो दादी थी, बाबा कहते हैं आपकी साथी थी, उनके अगर उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते या पूछते, दादी का स्लोगन था ना, जैसे हर एक का स्लोगन था, मम्मा का स्लोगन क्या था, मम्मा का स्लोगन क्या था, हर घड़ी को अपनी अंतिम घड़ी समझो। आज भी मुरली में उसकी पॉइंट है, अचानक होगा। मनमोहिनी दीदी का क्या स्लोगन था, अब घर जाना है, अब घर जाना है। और दादी का क्या स्लोगन था, जो बाबा खुद बता रहे हैं कि उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है, अर्थात फरिश्ता बनना। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही, अब कर्मातीत बनना है, बिना बोले भी याद दिलाती रही। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का आगे आएगा, तो हर ब्राह्मण का अभी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, क्या अब कर्मातीत बनना है, अब फरिश्ता बनना है। ये गीत भी है ना, लगी लगन ए, अब एक यही हमें फरिश्ता बनना है। अच्छा, बाबा कहते हैं आपका लक्ष्य है भी लेकिन नंबर वार है, लक्ष्य सबका यही है लेकिन उसको धारणा में नंबर वार ला रहे हैं। यही लगन हो अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात बाबा शायद इसी लाइन को पढ़ के ये गीत बनाया होगा, यही लगन हो क्या फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात, अब बाबा फिर उसका दूसरा डेफिनेशन दे रहे हैं, इस देह साकार देह से न्यारा सदा लाइट के देहधारी। पहले बाबा मुरलियों में कहा करते थे लाइट के कार्ब में चलो, आपको चलो तो ऐसे लगे कि मैं मेरे इर्द गिर्द लाइट है उसके अंदर मैं चल रहा हूं। लेकिन बाबा कह रहे हैं सदा लाइट के देहधारी, आकार तो हमारा यही रहेगा, देह से न्यारा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों के राजा, यानी शरीर हमें बांधे नहीं। अभी हमारी आंख हमको बांध लेती है, कान बांध लेता है, पांव और तरफ चल पड़ते हैं, कईयों को निंद्रा देवी आ रही है भाई है? आपके आसपास किसी को निंद्रा देवी आए थोड़ा उसको हिला दो हैं, ताकि फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों के राजा, क्योंकि ये मुरली बहुत गहरी है तो बाबा कहता है हल्के बनो, तो कई बारी मक्खन खाया खाते हैं तो ज्यादा नहीं खाया जाता, थोड़ी देर के बाद लगता है पेट भर गया। इसलिए मैं आपको निंद्रा देवी की कहानी सुना देता हूँ, क्योंकि कहानियां सबको अच्छी लगती है ना। आपको मालूम है कुंभकर्ण की युगल का क्या नाम था? कुंभकर्ण के युगल का नाम था निंद्रा देवी। अच्छा, अब जब कुंभकर्ण मारा गया तो निंद्रा देवी विधवा हो गई, विडो हो गई। तो आप जानते हैं कि विडो जो होती है भारत के अंदर उसको एकांत में रखा जाता है, यहीं रहो घर में, सफेद कपड़े पहन लो। कई लोग तो ब्रह्मा कुमारियों को भी ऐसा गिन लेते हैं सफेद कपड़े के कारण, और कहीं जाना नहीं, पार्टी में नहीं जाना, क्लब में भी जाना, शॉपिंग में नहीं जाना, किसी गृहस्थी लोग तो उसके हाथ में अपना बच्चा भी नहीं देते। अच्छा, तो इस प्रकार से निंद्रा देवी को भी यही पंचायत ने कहा कि तुमने 2 वर्ष तक बिल्कुल घर से नहीं निकलना। अब उन्होंने देखा कि 6 महीने के बाद वो उदास हो गई बहुत, उसका चेहरा ही उतर गया, डिप्रेशन में चली गई। तो फिर उन्होंने पंचायत की कि इसका कुछ तो करो, बेचारी देखो जैसे सांप बाबा का वो उदास हो गया था। तो फिर उन्होंने फैसला किया कि चलो और ना सही, इसको सत्संग में जाने दिया जाए, जहां ज्ञान ध्यान की बात हो रही हो। तो इसलिए निंद्रा देवी सत्संग में खास तौर पे आती है। जब आप कल्चरल प्रोग्राम देख रहे होंगे उसको अलाउड नहीं है कि आए, है ना, क्योंकि विंडो है बेचारी। और कहीं आपका ब्रह्मा भोजन हो रहा उसको अलाउड नहीं है, लेकिन जब आप मुरली सुन रहे होंगे तो आएगी। इसलिए उसे सावधान रहना, पता नहीं किसके पास बैठी हुई हो, है ना। अब आगे मुरली सुनते हैं। तो बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात इन कर्म इंद्रियों के राजा। अब आगे राजा की बात आपको याद होगी, बाबा ने क्या कही थी। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। ताली बजाओ, क्योंकि परमात्मा खुद कहे कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है तो कितने फखर की बात है। हमको बाबा ने क्या बनाया हुआ है, राजा बच्चा। आज की दुनिया में क्या होता है, किसी के बच्चा संतान होता है तो कहते हैं मेरा बच्चा राजा बच्चा बनेगा, राजा बनेगा, राजा बनेगा। अब जब बड़ा होकर नौकर बनता है अर्थात उसकी सर्विस लगती है तो लड्डू बांटते हैं, राजा तो क्या बना, लेकिन नौकर बनने, नौकर शब्द अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको सर्विस कहते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, कृष्ण काला नहीं कहते, सांवरा कहते हैं, रॉयल शब्द यूज करते हैं। यानी जब उसकी सर्विस लगती है तो लड्डू बांटते, क्या हुआ आज हमारा बच्चे की सर्विस लग गई है। तो बचपन में क्या था, राजा बनेगा, और ये हाल है। इसलिए बाबा कहते हैं, ये कितना लंबा बाबा ने टाइटल दिया है कि सारे सृष्टि चक्कर के अंदर एक ही बाप दादा है, जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा, जैसे कहते हैं नाम, एक एक को नाम सहित राजा बच्चा है और स्वराज्य अधिकारी है। यानी सतयुग का भी अधिकारी है और अपने इंद्रियों पर राज करने का अधिकारी है। ऊपर बाबा ने कहा था फरिश्ता अर्थात जो कर्म इंद्रियों का राजा है, तो हम अपने कर्म इंद्रियों को जीत कर फरिश्ता बन सकते हैं। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी, अब इसको उल्टा कर दो तो क्या मतलब निकलता है, कि जो फरिश्ता नहीं वो स्वराज अधिकारी भी नहीं। ऐसा स्वराज अधिकारी आत्मा लाइट के स्वरूप धारी, तो स्वराज अधिकारी वो बनेगा जो लाइट का स्वरूप होगा, क्योंकि इंद्रियों से प्रभावित नहीं होगा, लाइट का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्के पन की स्थिति में स्थित होके, अब बाबा हमारी पावर बता रहा है, कोई भी अगर ऐसे लाइट के डबल हल्के पन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। जब हम लाइट स्वरूप होके रहेंगे तो किसी से मिलेंगे उसको भी फीलिंग आएगी, जैसे हमें ब्रह्मा बाबा से आती थी। अभी ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। बाबा तीव्र पुरुषार्थी किसको कहता है, कि जो जिस मुरली में बाबा बताए उसको उसी समय धारण करें।
शिव पिता को अब याद करो।
थोड़ी सी स्पीड तेज करनी पड़ेगी मुझे। तो बाबा कहते हैं तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। ये जैसे ब्रह्मा बाप ने देखा कि अगर कोई भी मिलता दृष्टि लेता तो बात करते करते क्या दिखाई देता। पीछे बाबा ने कहा ना कि आप में से भी लाइट दिखेगी, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। बात करते करते लगेगा बाबा अशरीरी हो गए। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। वो समाचार शॉर्ट आप ही कर देता था जब देखते थे बाबा अव्यक्त है। जैसे कोई किसी काम में बिजी होता है ना तो दूसरा देख के अपनी बात जल्दी जल्दी करता है। फिर बाबा कहते हैं और किसी भी मुरली में चेक कर लो, क्योंकि ये मुरलियां सारी निराकार नहीं सुनाते। ब्रह्मा बाबा भी साथ सुनाते थे ना, उसमें कोई भी लौकिक रेफरेंस हो मुरली में ब्रह्मा बाप भी सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं और कोई भी मुरली में चेक कर लो, एक भी मुरली में, तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ। आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। हर मुरली में आत्मा का पाठ होता है। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, जैसे समाचार है सेवा का, स्वभाव संस्कार की बातें शरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। यानी अब बाबा कहते हैं समय अनुसार इन छोटी बातों का, स्वभाव संस्कार की बातों का शरीरी पने से विघन है, अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। अर्थात फरिश्ता बनने वालों को छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कार में अपना टाइम नहीं गंवाना है। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है, सेवा के लिए मेजॉरिटी को उमंग उत्साह है, प्लान भी बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन संदेश देना ये भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग जो हैं उनकी भिन्न भिन्न स्थान की सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी। तो बाबा ने सेवा का उस दिन चार्ट चेक किया था सबका, वर्गों का, स्थानों का, अच्छा रिजल्ट था। लेकिन सेवा के साथ साथ अशरीरीपन का वायुमंडल क्या करे करेगा, मेहनत कम और प्रभाव ज्यादा डालता है। सेवा के लिए भी अशरीरीपन जरूरी है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है जो दुनिया में हमारा ज्ञान सुनते हैं, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। बात भूल जाएगी और बातें सुनेंगे तो बात दब जाएगी, लेकिन वायुमंडल अगर पावरफुल है और उसका प्रभाव पड़ता है, आपकी अशरीरीपन की दृष्टि किसी को मिल जाती है तो अनुभव हो जाता है उसको। तो फरिश्ते पन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो, फरिश्ता रूप धारण करके सेवा करो। कोई ना कोई, अब कैसे करो, तो बाबा कहते हैं भाषण करते हुए कोई ना कोई शांति का, सुख का, खुशी का, आत्मिक प्रेम का अनुभव करो। जैसे दादी जानकी जी ने कल बाद में बोला, तो थोड़े से बोल में हर एक को खुशी का अनुभव हो गया, शरीरीपन का अनुभव हो गया, ऐसा भाषण करो। चलन में प्यार प्रेम और जो खातरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव सब करके जाते हैं। क्या जब भी हम सेवा करते हैं, भोजन कराते हैं, मिलते हैं जुलते हैं, वो अनुभव तो करके जाते हो, वहां जाके कहते भी हैं कि स्वर्ग देखना हो तो ब्रह्मा कुमारी में देखो, प्रेम देखना हो तो ये अनुभव है, तभी तो बोलते हैं ना। लेकिन अति इंद्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो कि उनको अति इंद्रिय सुख की फीलिंग आ जाए, शांति का नशा आ जाए, वाइब्रेशन का असर पड़े। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा कुमारी के सिस्टम से प्रभावित होकर जाते हैं, ऐसे सिस्टम परिवार के प्यार की, कि कहते हैं कि ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहीं नहीं मिलती, ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाए, सिर्फ भाषण नहीं। अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है, देने वाला कौन? यहां तक तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों का न्यारा ही है, ऐसा दुनिया में किसी का नहीं है, लेकिन ज्ञान भी बहुत अच्छा है, लेकिन देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन? तो आप सबके बाबा शब्द सुनने से ये भी कह देते हैं कि इनका कोई बाबा है। हम बाबा बाबा कहते हैं ना बीच में, कहते हैं हाँ इनका कोई बाबा है, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है, ये नहीं कहते कि हमारा भी वही बाबा है। तो बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये कोटों में कोई के मुख से निकलता है जिनकी आप सेवा करते हैं। एक बारी कह दें, मैं बाबा का, मारा बाबा मेरा, हैं क्या कहेंगे? दादी जानकी क्या कहती है? मेरा बाबा, बोलिए मेरा बाबा। निंद्रा देवी भी भाग जाएगी, अच्छा, क्योंकि उसका बाबा नहीं है वो। प्यारा बाबा, मीठा बाबा, शुक्रिया बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो संगम युग का लक्ष्य क्या है? फिर बाबा उसी बात पे आते हैं, हम सब आत्माओं का बाप आ गया, वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना, तो ये लक्ष्य भी है कि दूसरों की सेवा करते हुए हम उनको बाबा का परिचय दें। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल में फैलेगा, फरिश्ता अवस्था से ज्यादा फैलेगा, नहीं तो वो समझेंगे ये भी इसी दुनिया में रहते हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं, ये सात्विक भोजन कर लेते हैं, सादा वस्त्र पहन लेते हैं, हम नहीं पहनते, बाबा छिपा रहेगा। उन इतनों की दृष्टि से लाइट मिलती, वो कहेंगे फिर इनों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इनों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो बाबा कहते ये कहें, तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, चलते फिरते फरिश्ता रूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन की अनुभूति को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों का को समाप्त करने से संस्कार स्वभाव में डबल लाइट, कोई संस्कार आ भी जाए किसी का या अपना या कोई संकल्प आ जाए तो सेकंड में समाप्त करके डबल लाइट रूप फिर बन जाना है। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, अब बच्चों की सुन लो, कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं, ऐसे कई होते हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट छुप सकती है क्या? छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च की हो या माचिस की तीली की हो, लाइट कहीं भी जलेगी तो छिपेगी नहीं, और ये तो रूहानी लाइट है, तो कैसे कहेंगे हमें कोई जानता नहीं हमारी लाइट छुपी हुई है। तो अपने वायुमंडल से उनको अनुभव कराओ कि ये कौन है। चाहे जगदम्बा चाहे दादी जी ने ये नहीं कहा कि मुझे लोग जानते नहीं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसलिए दादी जी का मिसाल देते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा के लिए तो फिर भी सोच लेते हैं, ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार न्यारा प्यारा, हम तो स्थिर वतन शरीरधारी हैं। तो बाबा कहता है शिव बाबा ने नहीं कहा मेरे समान बनो, ब्रह्मा बाबा ने कहा मेरे समान बनो, और बाबा कहते नहीं तो दादी प्रकाशमणि जी के समान बनो। तो बाबा कहते हैं इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं, संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना, तो ये भी हमारे लिए अच्छा ग्राउंड है, अच्छा साधन है। इतने बड़े परिवार में संस्कारों वाले में हल्के रहना ये फरिश्ता है। संस्कार को देखकर कई बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं, वो कहते हैं बाबा बहुत अच्छा है, ब्रह्मा बाबा बहुत अच्छा है, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्राप्तियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सबके प्यारे बनना, इसमें कोई कोई, फिर बाबा कहते प्यारे बनना भी कोई कोई से प्यार नहीं, लेकिन कई बच्चे कहते हैं कोई कोई से प्यार विशेषता को देखकर हो जाता है, इनका भाषण बहुत अच्छा है, इनकी फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, इनकी वाणी बहुत अच्छी है, ये भी फरिश्ता बनने भी विघ्न है। क्योंकि कोई कोई का प्यार विघ्न है और सर्व का प्यार रास्ता है। प्यारा भले बनो लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्नेह से प्यारा बनाओ, विशेषता से प्यारा नहीं। ये इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वह गुण धारण कर लो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वो रॉन्ग है कि गुण के कारण प्यारा बनना, गुण भले धारण कर लो। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा अपनापन का अनुभव हो, ऐसे फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं। ये नोट कर ले कि दो बातें इस अवस्था में विघ्न डालती हैं, एक तो देह का भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, प्रेशर जन्म का, फिर देह भान प्रकट हो जाता है। यानी देह भान और देह अभिमान में बाबा ने फर्क बताया है, देह भान नेचुरल है क्योंकि हम 63 जन्म में देह लेते रहे लेते रहे लेते रहे, तो देह भान नेचुरली आ जाता है, और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान वो क्या है, ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है, वो अभिमान नीचे गिराता है। क्या देह अभिमान आता है, जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है, क्या मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव बहुत पड़ता है, कोई भी कला मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है, कोई तो इसलिए बाबा कहते हैं कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने से, सेवा में आगे बढ़ने से ये देह अभिमान अपने प्रति आता है, और दूसरों के गुण या कला या विशेषता के प्रति प्यार हो जाता है, ये दोनों प्रकार का देह अभिमान है। लेकिन याद कौन आएगा? दोनों प्रकार के देह अभिमान में क्या याद आएगा? देह भान ही याद आएगा ना, कि फलाने की बुद्धि बहुत अच्छी है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यानी फलाने की बुद्धि वो भी देह अभिमान, मेरी हैंडलिंग वो भी देह अभिमान, अपने देह की और दूसरे के देह का अभिमान। ये अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है। तो ये भी चेक करना है, और अभिमान वाले को अभिमान है उसको चेक करने का साधन क्या है? अब बाबा कहते हैं मुझे अभिमान है, कैसे पता लगे? अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, उसके विचार का या उसकी राय का या उसकी कला का या उसकी हैंडलिंग का अपमान किया, तो उसको बहुत जल्दी अपमान महसूस होगा। ऐसे नहीं लगेगा, सहन शक्ति नहीं होगी। अरे मुझे ऐसे कह दिया, तो बाबा कहते सहन शक्ति नहीं होगी। और अपमान महसूस हुआ तो उसकी दूसरी सूक्ष्म निशानी क्या है? एक तो हो गया उसको फील होगा, दूसरे को कैसे पता लगेगा? उसमें क्रोध का अंश पैदा हो जाता है, रोब। तो जो किसी भी कला के कारण रोब रखता है वो अभिमान है, वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर भी इशारा दे रहे हैं, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना भी बहुत सहज हो जाएगा। फरिश्ता यहाँ बनेंगे तो सेकंड में अशरीरी बन सकते हैं। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसी की विशेषता के सूक्ष्म रूप से भी लगाव या अभिमान तो नहीं, हर एक को देखना है। या तो किसी की विशेषता भगवान भूल गया वो याद आ गया, या अपना विशेषता। कई बच्चों की अवस्था छोटी सी बात में भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती, छोटी छोटी बात में। दिल खुश चेहरा, दिल खुश चेहरा खुश, उसकी बजाय चिंता वाला चेहरा या चिंता वाला चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है, और चलते चलते फिर दिल कष्ट भी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं। तो दिल खुश की बजाय दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो समझा, अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार को इमर्ज करो। बाबा बार बार कह रहा है, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कोई बच्चों का अनुभव है, सुनाने आए थे समाचार, लेकिन समाचार से परे आवाज से भी परे स्थिति का अनुभव किया। ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि लास्ट दिनों में दिवाली आई, पहले दिवाली आती थी बाबा के, हाँ बच्चे लाओ पटाखे लाओ चलाओ, तो बाबा जैसे उपराम है, अच्छा बच्चों मना लो दिवाली, पता लगता था बाबा उपराम है। कई बातों का समाचार सुनाने, बहुत प्लान बनाकर आते थे, ये बताऊंगा ये बताऊंगा ये पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलना था वो भी भूल जाते थे, इतनी बाबा की सूक्ष्म अवस्था थी। तो ये है फरिश्ता अवस्था। तो आज का क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। बाबा ने आठवीं नौवीं बार कहा है मैं कौन, अब एक बार आप बोलिए मैं कौन अच्छी तरह, ये बाबा पाठ पढ़ा रहा है। किसी बातों से किसी विशेषताओं से व अपनी विशेषता से देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे क्योंकि बच्चे हैं, वर्षा तो मिलेगा लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। जो वायदा है सदा साथ रहेंगे, सदा साथ राज्य करेंगे, तखत पर भले नहीं बैठेंगे लेकिन राज्य अधिकारी तो बनेंगे ना। बाबा ने ऊपर कहा है मेरा हर बच्चा राज्य अधिकारी है। तो वहां की राज्यसभा देखी है ना, जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं, सज्जू की सभा चित्रों में भी है, वह तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक राज्य की निशानी है ताज, तो राज तिलक जिसको कहते हैं, तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं है। ऐसे नहीं आप एक हफ्ता स्वराज्य अधिकारी रहे फिर थोड़ा डाउन आ गए, वो नहीं चलेगा। बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले ना ही बैठे लेकिन रॉयल फैमिली में अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, ये हुई मुरलीपुरी। आज जो पहली बारी आए हैं वे उठो, अच्छा पौनी सभा तो उठी हुई है, कल भी ऐसे ही था। अच्छा, जो भी पहली बारी आए हैं उन सभी को बाप से सकार में मिलने की पहली बारी मुबारक हो। सकार मैंने अव्यक्त में। अच्छा, क्या हुआ? अच्छा, अभी खड़े हो गए हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, सेवा का टन गुजरात का है, तो बाबा कहते हैं जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को पाई है ना, बाबा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में, ये खास सुनने की बात है, अंत में सेवा चाहोगे भी तो नहीं कर सकोगे, अभी जो कर ली सो कर ली। उस समय सेवा करने के सर्कमस्टांस ही नहीं होंगे, उस समय फरिश्ता लाइफ या शरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का यही काम आएगा जो पहले से अब कर सकते हो, और अचानक होना है। इसका अभ्यास अगर कम होगा, सेवा में ही लगे रहेंगे, रिजल्ट क्या होगी? सेवा में लगना है लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए, अचानक बिंदी लगाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा कहते हैं, बाबा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसे सरकमस्टांस में होना है, इसलिए बाप को लेना कोई ना दे कि आपने बताया नहीं। बाबा बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं, सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्श तो है, लेकिन बाबा क्या कह रहा है, चारों सब्जेक्ट है ना, तो सेवा की सब्जेक्ट में मार्क ली और तीन सब्जेक्ट में, अगर एक सब्जेक्ट में आपने कुल मार्क्स भी ले ली और तीन में कम ली तो क्या होगा? इसलिए बाबा ने कहा चार ही सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। ये बाप दादा की हर बच्चे के प्रति शुभ आशा है। शुभ आशा पूरी करेंगे कि चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स लेने, बाबा की आशा है। चारों ओर के दिल खुश, दिल सच्ची, दिल साफ वालों को हर संकल्प मुराद हासिल। कहते हैं ना, दिल साफ तो मुराद हासिल, इसका अर्थ है जो भी संकल्प किया उसकी सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसे तीनों विशेषताएं, बड़ा दिल, साफ दिल और सच्ची दिल वाले, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देखकर, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, पद्म गुना से भी ज्यादा, ताली बजाओ, पद्म गुना तो ठीक है, पद्म गुना से भी ज्यादा खुश होते हैं, और ऑटोमेटिक गीत बजता है, वाह वाह मेरे बच्चे वाह। तो सदा मुबारक के पात्र बच्चे वाह, सदा मुबारक किसको मिलेगी, ये पूरा करेगा। अब आपको सुनाते हैं दादी जानकी जी का, गौर से सुनना, छोटा सा है लेकिन इतना उमंग उत्साह बढ़ाने वाला है। हमने भी मुरली सुनी, जानकी दादी ने भी सुनी, उनके उद्बोधन क्या है। दादी जानकी जी, ओम शांति। जैसा लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य अनुसार लक्षण भी आ गए, आ जाए, आ गए हैं, आ गए हैं ना, बाप दादी कह रही है, देखो उसके अंदर है तो कह रही है, बोलो बाबा की कमाल है ना। आज के दिन ऐसे सहज योगी, राज योगी, चलते फिरते, खाते खिलाते फरिश्ते की लाइफ अब ना बनेगी तो कब बनेगी। संगम युग के दिन कितने प्यारे हैं, बाबा हमारे साथ है, साथ है साथी बनने के लिए। कमाल है बाबा आपकी, ये दादी के मुंह से तो कमाल ही निकलता है। बाबा दवाई भी दे रहे हैं और दुआएं भी दे रहे हैं। आज शायद दादी ने दवाई खाई होगी, थोड़ी बहुत है ना। आज का दिन कितना वंडरफुल है, मुरली तो अच्छी है, सुनते जाओ, अपने दिल से लगाते जाओ। देखो दादी साथ साथ कह रही है, दिलाराम बाबा कितना वंडरफुल है। मैं तो यही कहूंगी कि हम सो फरिश्ता अभी बन जाए, देवता पीछे बनेंगे। फरिश्ता तो बन जाए, फरिश्ता अभी बनेंगे या बने हुए हैं? तो दादी पूछती है, मैं पूछती हूँ साथी बहनों से, भाइयों से, कि फरिश्ता बन जाए या बने हुए हैं, अपनी अवस्था बयान कर रही है। अब आगे देखिए, शांति और शक्ति, प्रेम और खुशी, चारों बातों का वायुमंडल है। सबके अंदर दादी ने क्या देखा उस वक्त, शांति शक्ति प्रेम खुशी। शब्द क्या बोलूं बाबा, हम खुश हैं, राजी हैं, खुश राजी की महफिल है, बाबा को कह रही है। खुश राजी हैं सभी, नाराज कोई नहीं है, ना होता है ना होने देता है। बाबा आपने ऐसा हमारे को संभाला है, 100 साल से भी ऊपर हो गई। अच्छा बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा कहेंगे मेरी बच्ची, हम कहेंगे मेरा बाबा, बाबा कहेगा मेरी बच्ची। मैं कौन, मेरा कौन, बस और कुछ नहीं सोचना। मैं कौन, आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है, मन बेचारा तो शांत हो गया है, बुद्धि कहती है चारों ओर शांति का वातावरण बनाने में दृष्टि वृत्ति स्मृति तीनों इकट्ठी सेवा करती हैं। ये देखो लास्ट बात, बुद्धि कहती है चारों ओर शांति का वातावरण बनाने में दृष्टि वृत्ति स्मृति तीनों इकट्ठी सेवा करती हैं। अच्छा ओम शांति। अभी हम 3 मिनट साइलेंस में बैठते हैं।
अपने स्वरूप में دنیا کے آکرشنوں میں دنیا کے آکرشنوں میں اب ہمیں نہ رہنا ہے اب ہمیں نہ رہنا ہے لگی لگن بس ایک یہی لگی لگن بس ایک یہی ہمیں تپ کیا کرنا ہے بن کے تپ کی مورت ساتھی اب اپنے گھر چلنا ہے لگی لگن بس ایک یہی لگی لگن بس ایک یہی